कि गीता एक ऐसा अद्भुत उपदेश हमारे समक्ष रखती है जिसका आधार क्या है, ज्ञान। गीता में यदि आप पूछें कि गीता का आधार क्या है, ज्ञान, ज्ञान माने वही अनुभव संयुक्त ज्ञान, जिसको हमने विज्ञान कहा है वही ज्ञान है। तो यह जो ज्ञान का आधार है उस पर मानो यह साधना की इमारत खड़ी हुई है। अब उसमें ये पाए हैं, ज्ञान एक पाया, भक्ति दूसरा पाया, तीसरा पाया कर्म, चौथा पाया ध्यान का, ये चारों के चारों पाए हैं। परंतु उसका जो आधार है, उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो नींव है, वह नींव है विज्ञान। उसी पर सारा का सारा ढांचा खड़ा है। इसलिए आप देखेंगे अर्जुन को सारा उपदेश भगवान ने दिया और उसके बाद क्या पूछते हैं, कहते हैं अंत में, कच्चित एतत् श्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणश्चस्ते धनंजय। अच्छा धनंजय, एक बात बताओ, मैंने तेरे प्रति जो कुछ भी कहा है क्या वह तूने एकाग्र चित्त से सुना है? और एकाग्र चित्त से सुनने के फलस्वरूप तेरे जीवन में अज्ञान के कारण जो मोह पैदा हुआ था वह मोह क्या दूर हुआ है? शब्दावली पर, शब्द की रचना पर ध्यान दीजिए। क्या पूछते हैं भगवान कृष्ण, कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणश्चस्ते धनंजय, अज्ञान से जो सम्मोह तेरे जीवन में पैदा हुआ था वह क्या दूर हुआ, नष्ट हुआ? और अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में आच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि कहता है नष्टो मोह, मेरे जीवन का नष्ट या जो मोह था वह नष्ट हो गया है। तो अर्जुन के जीवन में मोह आया था, मोह कैसे आया था, अज्ञान के कारण। और ज्ञान क्या करता है, उस अज्ञान को दूर कर देता है। अज्ञान को दूर करते ही उस अज्ञान से जो मोह पैदा हुआ था वह दूर हो जाता है। यह ज्ञान का काम है। तो ज्ञान निवारक काम करता है, दूर करने का काम करता है, मल को साफ करने का काम करता है। और जब मोह दूर हो जाता है तो हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जो हम हैं, जो हमारा अपना स्वरूप है, जिसको कहा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, डिविनिटी की बात कही कि हम ब्रह्म ही हैं। यह जो ज्ञान की बात है, हम आत्म स्वरूप हैं। पर्दा क्या है, मोह का। और यह मोह कैसे पैदा हुआ, अज्ञान से। तो अज्ञान दूर कैसे होगा, ज्ञान से। तो ज्ञान हम लाएं तो ज्ञान केवल झाड़ू देने का काम करता है, मल को दूर करने का काम करता है। तो ज्ञान अज्ञान को निकालेगा, अज्ञान निकलने से उसके कारण जो मोह पैदा हुआ था वह दूर हो जाएगा। मोह के दूर होने से हमको अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। यही अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में आच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कहता है कि आपकी कृपा से, मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है प्रभु, यह तो आपकी कृपा से नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं स्मृति खो चुका था, क्या करना ठीक क्या करना ठीक नहीं, यह विवेक मैं खो बैठा था, अभी वह विवेक मुझे प्राप्त हो गया है। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में आच्युत स्थितोस्मि गत संदेह, मैं अब स्थित हो गया हूं अपने आप में, स्वस्थ हो गया हूं। गत संदेह, मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। मानो अर्जुन स्वस्थ हो गया। यह जो स्वस्थ शब्द है, हिंदी में तो निरोग के लिए हम उपयोग में लाते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं बीमार था अब स्वस्थ हो गया, मैं बीमार था अब निरोग हो गया, हम यह कहते हैं। पर संस्कृत में स्वस्थ शब्द का तात्पर्य है अपने आप में स्थित होना। स्व माने अपना आप, स्थ माने स्थित हो जाना। तो अपने आप में स्थित होने को कहते हैं स्वस्थता। जब तक मैं बाहर स्थित हूं अपने से बाहर, तब तक वह अस्वस्थता है। और जब मैं अपने आप में स्थित हो जाता हूं तो वह स्वस्थता है। तो अर्जुन जो कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा यह जो अज्ञान से उत्पन्न मोह था वह दूर हो गया, अब मुझे अपनी स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से, और आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया, मैं अपने आप में स्थित हो गया हूं, और आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो ज्ञान हमें यही लाता है। और इसीलिए तो आप देखेंगे ज्ञान की कितनी प्रशंसा है। वहां पर अर्जुन को सबसे पहले जो पाठ पढ़ाया गया ज्ञान का, आप देखेंगे तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, सापेक्ष दृष्टि से देखेंगे, ज्ञान का पाठ ही पहले पढ़ाते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि तू शरीर नहीं, तू आत्म तत्व है, इसी का तो उपदेश पहले भगवान कृष्ण देते हैं। अर्जुन कितने मोह में गड़ गया था, वह तो कह ही देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने यहां तक कहा कि तू नपुंसक है, गांडीवधारी अर्जुन को कोई नपुंसक कहे वह कितनी बड़ी गाली हो सकती है। इससे बड़ी निंदा अर्जुन की नहीं हो सकती कि श्री कृष्ण कह देते हैं तू क्लीव है, तू नपुंसक है, अनार्य के समान तू बातें कर रहा है, और ऐसे विषम स्थल में तुझे इस प्रकार मोह प्राप्त हुआ है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनारिजुष्टं अस्वर्ग्यं अकीर्तिकरम अर्जुन, ये कैसी बात करता है तू। कितना फटकारा अर्जुन को, अर्जुन फटकार सुनकर के तिरस्कृत होकर के तिलमिला जाता है, जाता है तिलमिला, कुछ तर्क करने की चेष्टा करता है, परंतु फिर अपनी गहराई में उतर करके अपनी कमजोरी को भी पकड़ पाता है। माने यह जो यहां पर भर्सना की गई है अर्जुन की, तो इसका भी एक मानो वहां पर महत्वपूर्ण अर्थ है। वह अर्थ क्या है कि जब मनुष्य बहुत मोह में रहता है उस समय और कोई दवाइयां मानो कारगर नहीं होती हैं, तो भगवान ने पहले तो फटकार बताई, तुझे जो ज्ञान दिखाई देता है वह अज्ञान है, प्रज्ञावादांश भाष से। एक ओर तू ज्ञानी के समान बात करता है और दूसरी तरफ तेरे जो कर्म है, तेरे जो आचरण है, वे आचरण अज्ञानी कैसे हैं। कितना फटकारा, कितना कितना, जिसको हम कहेंगे कि दुत्कारते भी हैं, धिक्कारते भी हैं। और फिर उसके बाद जब अर्जुन कहता है कि मैं तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यच्छेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम्, आप कृपा कीजिए मुझ पर, मैं आपका शिष्य हूं। ठीक है, कार्पण्य दोष से मैं दूषित हो गया हूं, मेरे भीतर में कायरता आ गई है, और इसीलिए मुझे सूझ नहीं रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। अपने इस शिष्य को, अपने शरण में आए हुए शिष्य की आप रक्षा कीजिए, आप उसे समझाइए। शरणागत हुआ अर्जुन फटकार के फल स्वरूप। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं, तो पहला क्या ज्ञान देते हैं, अशच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाष से गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। माने यह पहला ज्ञान का पहला पाठ है कि अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष से, अरे तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। अब यहां पर दो प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। एक अर्थ तो यह है कि तू शोक कर रहा है भीष्म पितामह के लिए, द्रोणाचार्य के लिए, और अन्य कृपाचार्य इत्यादि जो महज्जन हैं कौरवों की तरफ, उनके लिए तू शोक कर रहा है, और तेरी अपनी तरफ जो लोग हैं उनके लिए शोक कर रहा है। युद्ध में ये सब मारे जाएंगे, मारे जाने से जिनको साथ में लेकर के हम राज्य करना चाहते थे वे ही जब मर गए, तो फिर इस राज्य का क्या हम करेंगे लेकर के। ये जो बातें हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तो दो अर्थ ऐसे कि ये जो हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, ये तो वैसे भी अशोच्य हैं, इनकी कीर्ति इतनी है अर्जुन, यदि वे युद्ध में प्राप्त होते हैं स्वर्ग गति को तो उनका तो नाम ही फैलेगा, उनके लिए तू शोक क्या कर रहा है। वैसे भी वृद्ध हैं, काल एक न एक दिन तो आता ही है, काल की गति को कौन रोक सकता है। तो ये जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि जिनके लिए तू शोक कर रहा है वे शोक करने के योग्य नहीं है एक दृष्टि से। अच्छा, दूसरी दृष्टि वे बताते हैं, देह की दृष्टि से तू देखेगा तो भी शोक करना उचित नहीं है। देह आज नहीं मरेगी तो कल मरेगी, अद्य किंवा शताब्दांते, आज मृत्यु नहीं होगी तो शताब्दी के बाद होगी। मनुष्य कभी न कभी तो मरेगा, शरीर तो नाशवान है ही, नष्ट होगा, तो जो नष्ट होने के स्वभाव वाला है उसके लिए तू शोक कर रहा है, इसलिए भी तू ठीक ठीक मानो ज्ञान को पकड़ नहीं पा रहा है। यद्यपि तू दिखाने की चेष्टा कर रहा है अर्जुन की तू ज्ञानी है, तो इस दृष्टि से भी समझाया। और फिर जो बुनियादी ज्ञान है वह बुनियादी ज्ञान रखते हैं कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इन दोनों का संबंध बताया। अगर यह संबंध हमारे भीतर में बना रहे, इसकी प्रतीति हमें हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत सी समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है। आज जब हम आत्मा के संबंध में सोचते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? यह शरीर, आत्मा कहने का मतलब मैं आत्म तत्व हूं। आप चिंतन कीजिए, हमारा मन अभी साफ नहीं है, परिष्कृत नहीं है, चंचल है, उसमें निश्चंचलता नहीं आई है। तो आज जब मैं सोचता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्म तत्व हूं, तो केवल बात की बात है, इसकी समझ मुझे नहीं आती। मैं कहता तो हूं कि मैं आत्मा हूं, पर समझ नहीं पाता कि आत्मा कहने का क्या मतलब है। मैं कितना भी कहूं मैं मन नहीं हूं, मैं आत्म तत्व हूं, बात समझ में नहीं आती है। तो यह जो बात आज समझ में नहीं आती है, यदि मैं इसको समझने की साधना करता रहा तो धीरे धीरे भगवान कृष्ण आश्वस्त करते हैं, और ये हमारे जितने भी महर्षिजन हैं वे भी आश्वस्त करते हैं कि बात समझ में आती है। हम इस आत्मा को देह से पृथक अनुभव कर सकते हैं इस साधना के द्वारा। कठिन हो सकता है, जीवन में काम तो कठिन ही होते हैं, पैसा कमाना भी क्या सरल है? कितनी कठिनाई से, कितना श्रम करने से मनुष्य को पैसा मिलता है। तो जब भौतिक जीवन में भौतिक समृद्धि जो हम पाते हैं उसके लिए कितनी कठिन साधना करनी पड़ती है, तब तो यह तो कहेंगे कि ऐसी साधना है जहां कुछ दिखाई नहीं देता है, मानो जहां हम अंधकार में हाथ मारते हो, एक जहां पर प्रकाश है चले जा रहे हैं दिखाई देता है, वहीं जब इतना कठिन है तो जहां अंधकार है कुछ सूझता नहीं है कि हम ठीक रास्ते जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो ये संशय आकर के खड़े होते हैं, वहां पर यह कठिन हो जाता है। परंतु इस कठिनाई को भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई ठीक अभ्यास करता रह, वैराग्य जीवन में ले आ, इससे यह कठिनाई आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं कहते कि यह कठिनाई कठिनाई बनी रहेगी, ऐसा नहीं कहते हैं कि यह कठिनाई आसान हो जाएगी। कैसे होगी? अर्जुन ने तो पहले यही कहा, जैसे योग की बात करें, ध्यान योग की बात, हमारी जो चर्चा तीनों दिन चलेगी संगम के रूप में चलेगी। ऐसा आप मत सोचिए कि मैं ज्ञान योग को अलग एक दिन बताऊंगा, कर्मयोग को बताऊंगा, ध्यान योग को बताऊंगा, ये तो संगम ही है और संगम को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण यह संगम ही दिखाते हैं कि हमारे जीवन में वॉटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, पर प्रमुखता से आज जैसे प्रमुखता से हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, पर इसमें कुछ ध्यान योग की भी बात है, भक्ति योग की भी बात संकेत के रूप में आज न रहे तो कल रहेगी, पर हम इन सबको मिलाकर के आपके समक्ष चिंतन रखना चाहते हैं। तो हम यह कह रहे थे कि ठीक है, अभी तो हमको यह शरीर आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता, उसके लिए क्या करें? साधना करनी पड़ेगी, और साधना करने के लिए कठिनाई तो लगती है। अर्जुन ही कहता है बहुत कठिन है महाराज, आप जो कहते हैं अपने मन को शांत करो, शांत करने से आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग दिखेंगे। आज मन अत्यंत चंचल है, चंचल होने के कारण शरीर और आत्मा अलग अलग मालूम ही नहीं पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि सब मिला हुआ है। श्री रामकृष्ण जैसे उदाहरण देते हैं कच्चे नारियल का, डाब का, वे कहते हैं डाब देखा है ना, वे पूछते हैं और कहते हैं देख डाब में, कच्चे नारियल में जो गूदा है वह छिलके के साथ कैसे एक रूप हो गया रहता है? ऐसा लगता ही नहीं कि गूदा और छिलका एक है, अलग अलग है, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसमें रस ही रस भरा हुआ है, और हम उसमें से गूदे को अलग निकालना चाहें तो आप देखेंगे उसके साथ छिलका भी कट करके निकल आता है, दोनों इतने एक रूप हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? उसमें रस भरा है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्तों ने पूछा महाराज शास्त्र भी कहते हैं, आप भी उपदेश करते हुए कहते हैं कि आत्म तत्व भीतर में यह शरीर और मन इन दोनों से अलग है, और आप अलग होने की बात कहते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं, पर प्रतीति तो होती नहीं। इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण ये उदाहरण देते हैं, डाब का उदाहरण, कहते हैं कि देख कहां अलग लगता है गूदा छिलके से, जिस समय उसके भीतर रस रहता है नहीं अलग लगता, काटने से छिलके छिलका भी कट करके निकल आता है, पर इसी डाब को सूखने दे, उसके भीतर का रस जो ही सूख जाए तो तनिक सा उसको धक्का दे दें और फिर उसके बाद ऐसा हिलाएं तो वह गूदा भेला अलग हो गया, और अलग होकर के आवाज गड़गड़ करता है। ठीक इसी प्रकार आज हमारे भीतर में वासना का रस भरा हुआ है, लबालब, और इसीलिए आत्म तत्व इस शरीर या मन रूपी छिलके से एक हो गया लगता है, अलग दिखाई नहीं देता है। पर वासना रस को यदि हम सुखाएं और सुखाने में समर्थ हो जाएं तो आत्म तत्व अलग हो जाता है और पता चल जाता है यह शरीर और मन और यह आत्म तत्व अलग, इसकी प्रतीति होती है, रे अनुभूति होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं जैसे भेला गड़गड़ आवाज करता है, ठीक इसी प्रकार आत्म तत्व बोलता है, अलग अलग दिखाई देता है। थे ऐसे मनीषी, थे श्री रामकृष्ण की बात छोड़ दें, और भी ऐसे मनीषी थे जिन्होंने इस प्रकार आत्म तत्व को शरीर से अलग करके दिखाया। जैसे हम स्वामी तुरियानंद जी की बात पढ़ते हैं, स्वामी तुरियानंद श्री रामकृष्ण के ही शिष्यों में से एक सन्यासी शिष्य, वेदांत में बहुत रमे हुए, इतना ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा। पहले तो श्री रामकृष्ण के पास आते नहीं थे, जब छोटे थे पढ़ते थे उसी समय से वेदांत में बड़ी रुचि थी, वेदांत की चर्चा करते थे। तो एक समय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, हरि के, हरि नाम था उनका पूर्व नाम, बाद में नाम पड़ा स्वामी तुरियानंद, कहा कि हरि आजकल नहीं आता। तो किसी ने कहा कि महाराज आजकल वह वेदांत की खूब चर्चा करता है, कहना एक बार कि मैंने बुलाया है जरा उसको ले तो आना। बड़ी मुश्किल से एक दिन हरि आया। श्री रामकृष्ण बोले, क्या रे, सुना कि आजकल तू वेदांत की बड़ी चर्चा करता है, वेदांत में और क्या है रे? यही है ना कि यह जो जगत है वह अनित्य है और ब्रह्म ही एकमात्र नित्य है, इतना ही तो है। कहा महाराज इतना ही, तो इसके लिए तू यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आने से तो इसकी प्रतीति तुझे होगी। तो कितनी भी चर्चा करे, तो कितनी भी चर्चा करने से ब्रह्म का जो नित्यत्व और जगत का अनित्यत्व, यह क्या तुझे भासित हो जाएगा? यहाँ आ। और फिर हरि महाराज अपनी गलती समझ गए और वे जाते हैं, ये तुरियानंद। और तुरियानंद कैसे, स्वामी विवेकानंद ने बुलाया था वेदांत प्रचार के लिए अमेरिका, कहा था अब तक तो तुमने एक ऐसा सन्यासी देखा जो कर्म में व्यापृत है, इतना कर्मशील दिखाई देता है, अब एक सन्यासी तुम्हारे पास आ रहा है, वह वेदांत का जीता जागता विग्रह है, मानो वेदांत में रमा हुआ, आत्मा में रमा हुआ, शरीर का भान नहीं। हरि महाराज वहां जो गए तो स्वामी विवेकानंद ने परिचय कराया, ये स्वामी तुरियानंद, ये अपनी अनुभूति के माध्यम से वेदांत का प्रवचन देंगे। और सचमुच ऐसे ही थे वे। बनारस में जब कार्मेंकल का ऑपरेशन उनका हुआ, बहुत बड़ा फोड़ा हुआ था, क्लोरोफॉर्म देने की बात आई, सिविल सर्जन ने कहा कि क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म लेने के लिए राजी नहीं हुए हरि महाराज। बहुत भक्तों ने समझाया, सन्यासियों ने कहा कि महाराज बड़ा पीड़ादायक है, परंतु मानते ही नहीं। और अंत में हरि महाराज ने कहा कि ठीक है, ऑपरेशन के कुछ 5 मिनट पहले मुझे बता देना और फिर ऑपरेशन कर लेना। अब सिविल सर्जन को लगा कि क्या बात करते हैं ये, ठीक है, ऑपरेशन के पहले 5 मिनट बता दिया गया कि अब 5 मिनट बाद ऑपरेशन शुरू करेंगे, ठीक है। 5 मिनट बाद डॉक्टर ने स्विच चुभाई, कोई सिहरन नहीं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, ध्यान में डूबा हूँ, संगीत सुन रहा हूँ, मच्छर काटे तो रिफ्लेक्स एक्शन से मैं मार देता हूँ, अनुभूति तो होती है कि मच्छर काट रहा है। अब कार्बेंकल, उसके बाजू में वे पिन चुभ होते हैं, सुई चुभ होते हैं, कोई सिहरन नहीं है, कोई कपकपी नहीं है, कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। डॉक्टर को बहुत ताजुब हुआ। फिर धीरे धीरे वे काटते हैं थोड़ा सा, कोई सिहरन नहीं, मानो जड़ काष्ठ के समान बैठे हैं। और फिर उसके ऑपरेशन 2-2.5 घंटे का किया, उसके बाद मलहम पट्टी कर दी गई, और तब उसके बाद कानों में फिर प्रणव नाद किया, ओंकार नाद किया, और फिर मानो पीड़ा का बोध हो रहा है, मन चला आया है शरीर में, कहा हाँ अब पीड़ा का बोध हो रहा है। ऐसे महात्मा अपने ही जमाने में, कोई ये पुराण काल के महात्मा नहीं है। तो आज ऐसे महात्मा जो अपने शरीर से आत्मा को अलग कर सकते थे, ऐसे तो श्री कृष्ण जो लक्ष्य रख रहे हैं अर्जुन के समक्ष, वह ऐसा लक्ष्य नहीं है कि जो प्राप्त ही न हो सके। तो अर्जुन भले कहते हैं महाराज मन तो बहुत चंचल है, कही रहे प्रश्न कही दिया कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्धृणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, कि मन तो अत्यंत चंचल है, प्रमथनशील स्वभाव का है, ऐसा लगता है कि वायु को पकड़ना एक बार सहज है पर मन को पकड़ना तो बहुत कठिन है महाराज। और आप कहते हैं ऐसे मन को वश में किया जा सकता है, मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण अर्जुन की बात को काटते नहीं, ऐसा नहीं कहते कि तू गलत कह रहा है, बल्कि कहते हैं असल क्षेम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कहते हैं तू ठीक कहता है, निसंदिग्ध रूप से यह मन बड़ा ही पकड़ में आने में बहुत कठिन है, बड़ी कठिनाई होती है। अभ्यास से नु तो कौंतेय वैराग्य ने चक्रियते, पर भैया अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के द्वारा ऐसे दुर्जय मन को भी अपने वश में किया जा सकता है और किया जाता है। यह भारतीय पद्धति है मनोविज्ञान की। इस पद्धति पर कल हम विशेष रूप से विचार करेंगे जब हम ध्यान योग का पक्ष लेंगे, क्योंकि ध्यान योग और ज्ञान योग ये दोनों जुड़े हुए हैं। ध्यान योग के सहारे हम मन की चंचलता का नाश करते हैं, और जब मन चंचल होता है तो जो ज्ञान हमने सुन करके और पढ़ करके अर्जित किया है उसकी अनुभूति होती है, वह विज्ञान में परिणत होता है। निश्चंचल मन में उस सत्ता की अनुभूति होती है जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं। तो आज की जो चर्चा आपके समक्ष की गई एक उपोद्घात के रूप में, और उसके साथ ज्ञान योग की चर्चा, कि ज्ञान योग का शिक्षण देते हैं, उपदेश देते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, कहते हैं अर्जुन तू यह जान ले, तू यह शरीर नहीं है, तेरे इस शरीर के कितने जन्म हो चुके, यह तो शरीर मरता है नष्ट होता है फिर जन्म लेता है इस प्रकार, पर इसके भीतर में जो शरीरी है उसका नाश नहीं होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। यह जो देही है, देह के भीतर में रहने वाला, यह जो शरीरी है, शरीर के भीतर में अवस्थान करने वाला, वह मरता नहीं है, वह तो शरीर लेकर के धारण करके उसे छोड़ देता है। जैसे हम कपड़ा ग्रहण करते हैं, पहनते हैं, और कपड़ा जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार यह जो आत्म तत्व है, यह देही है, यह शरीरी है, मानो उसने शरीर ग्रहण किया और शरीर पुराना पड़ गया, छोड़ देता है, फिर नया ग्रहण करता है। महाबाहो, इस संसार में इसी प्रकार का क्रम चला हुआ है, इसको देख करके तू मुह्यमान क्यों होता है? मृत्यु तो अवश्यम भावी है, इस पर तू विचार क्यों नहीं करता है? आज तक कोई अमर हो सका है? या अद्भुत शिक्षा है, जो शिक्षा हम जानते हुए भी अपने जीवन में नहीं ले पाते हैं कि मृत्यु सुनिश्चित है। यदि संसार में कोई वस्तु सुनिश्चित है तो वह मृत्यु है, परंतु ऐसे सुनिश्चित मृत्यु तत्व के संबंध में भी हम शोक करते हैं, यही सबसे आश्चर्य की बात है। वही तो कहा था ना, युधिष्ठिर से पूछा गया था यक्ष प्रश्न, ख्याल कीजिए महाभारत में यक्ष ने कई प्रश्न पूछे, और उनमें एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, दुनिया में सबसे आश्चर्य क्या है? आप जानते हैं उस कथा की पीठिका को, युधिष्ठिर अपने भाइयों को जल लाने के लिए भेजते हैं, सभी प्यासे हैं, एक एक भाई जल लाने के लिए जाता है और एक सरोवर के तीर में मृत हो जाता है। एक प्रश्न कोई करता है, उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते या उस प्रश्न की उपेक्षा करते हैं, जल पीते हैं, मानो यक्ष प्रश्न करता है, सुनो जल पीने के पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो प्रत्येक ने देखा इधर उधर, कोई दिखाई नहीं दिया, जल पी करके बाहर जैसे ही निकला वहां पर मूर्छित होकर के पड़ गया, मृत्यु हो गई, चारों भाई ऐसे ही मृत हो जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर आए तो कहा कि देखो मैं सरोवर का मालिक हूँ, यक्ष हूँ, सुनो मैं प्रश्न करता हूँ, तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मेरी उपेक्षा कर दी, इसलिए वे मृत हो गए, तुम मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे भाइयों को जीवन दान दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दूंगा या नहीं यह तो मुझे नहीं मालूम, पर जो उत्तर मुझे सूझेगा वह मैं देता हूँ। तो प्रश्न किया, बहुत से प्रश्न थे, एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, और उसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम, कि हम दिन ब दिन दिन प्रतिदिन प्राणियों को मृत्यु के मुंह में प्रविष्ट होते देखते हैं, पर हम जो बचे हैं हम कभी ऐसा नहीं समझते कि हम भी एक दिन मृत्यु के कराल गाल में चले जाएंगे, इससे बढ़कर के अचरज की बात क्या हो सकती है, और ये सही है। तो अर्जुन को इस सत्य के प्रति सचेष्ट करते हैं, तो ज्ञान योग हमें सचेष्ट करता है, मृत्यु जीवन का एक सत्य है, पर इसके लिए हमें हतोत्साहित नहीं होना है, हमें मृत्यु का चिंतन इस रूप से करना है वह अंतिम गति है, मृत्यु हमारी नियति है, उस पर हमारा कोई वश नहीं है, पर जब तक हम जीवित हैं इस ज्ञान के माध्यम से हम निराशा को दूर कर दें, जीवन में उद्यम को स्थान दें, हमारा भीतर और बाहर मन उत्साह से भर सकता है इस आत्म तत्व के ज्ञान से, और हमारे जीवन से आनंद मन उच्छीरित हो सकता है। यह बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं गीता के दूसरे अध्याय के माध्यम से। कल हम लोग चर्चा करेंगे विशेषतः ध्यान योग की और उसके साथ साथ कुछ कर्म योग की। अंतिम दिन कर्म योग और भक्ति योग इन दोनों को मिलाकर के चर्चा करेंगे। तो आज आपसे हम विदा लेते हैं। हरि ओम तत्सत।
भक्ति कर्म ज्ञान एवं ध्यान योग का संगम, इस विषय पर कल हमने पहला चिंतन किया था। यह बताया था कि गीता में ज्ञान भक्ति कर्म और ध्यान योग की बातें प्रायः साथ साथ ही हमें मिलती हैं। कोई ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, बल्कि सबका एक विलक्षण संगम गीता में हमें दिखाई देता है। और इसका कारण भी हमने बताया था। भगवान कृष्ण बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, वे जानते हैं कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से परिचालित होता है और उसकी प्रवृत्ति में विचार, भावना और क्रिया की शक्तियां होती हैं। इसीलिए हम इन चारों योगों को बिल्कुल अलग अलग खंड में नहीं बांट सकते, बल्कि इन सब को साथ लेकर के चलना साधना पथ की दृष्टि से अधिक अच्छा है, उपयुक्त है और वही सही तरीका भी दिखाई देता है। इसी दृष्टि से आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद का वह कथन रखा था जहां पर मानव जीवन के लक्ष्य को बताते हुए उसकी प्राप्ति का उपाय भी वे निर्देशित करते हैं, जहां पर वे यह कहते हैं कि चाहे इनमें से एक या एकाधिक या सभी योगों का सहारा लिया जाए और मुक्त हो जाया जाए, यही धर्म का सार सर्वस्व है। कल आपके समक्ष हमने यह भी कहा था कि किस प्रकार प्रवृत्ति की प्रबलता के कारण कोई व्यक्ति ज्ञान योग के रास्ते से जाता है, कोई भक्ति योग के रास्ते से, पर इसका मतलब यह नहीं कि जो ज्ञान के रास्ते से जा रहा है उसके जीवन में अन्य तीनों योगों की बातें ना हो। यह एक समन्वित पथ है और इस दृष्टि से विचार करते हुए कल ज्ञान के संबंध में आपके समक्ष विशेष विचार किया था। भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि मोह के कारण ही मनुष्य की दुर्दशा होती है। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य का निर्धारण किया गया, लक्ष्य की प्राप्ति के साधन भी बताए गए और उसकी प्राप्ति में मोह ही बाधक होता है। अर्जुन एक उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष आता है। भगवान कृष्ण ने इसीलिए अर्जुन से कहा था, समस्त उपदेश देने के बाद अर्जुन मैंने तेरे प्रति जो कहा वह क्या तूने एकाग्र चित्त से सुना, और सुनने के फलस्वरूप तेरे जीवन में अज्ञान के कारण जो मोह पैदा हुआ था वह क्या दूर हुआ? अर्जुन ने कहा कि हां भगवान, आपकी कृपा से मेरा वह मोह दूर हो गया है। भगवान कृष्ण अन्यत्र भी यही कहते हैं अर्जुन से कि अज्ञान के कारण तेरे जीवन में मोह आया है।